आज गुरु पूर्णिमा है, जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, है ना। क्यों व्यास पूर्णिमा कहते हैं? नहीं मालूम? व्यास देव का आज जन्मदिन है, व्यास देव का जन्मदिन है, तो आज व्यास पूर्णिमा है, मतलब व्यास देव का जन्मदेव। और व्यास देव कौन है? साहित्यिक नहीं, सत्यावेश अवतार है ना। और सत्यावेश ठीक है, वो तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो जो कि अपना पहला स्कंद जहाँ पे भगवान के अवतारों का चर्चा हुआ है, वहाँ पे वर्णन आता है व्यासदेव व्यासावतार का, जो कि भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। लेकिन हमारे गुरु परंपरा के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे कि चार संप्रदाय है। कौन कौन से संप्रदाय है? चार, श्री ब्रह्म लाइन से बताइए, ब्रह्म संप्रदाय है, और आगे श्री संप्रदाय, और कुमार संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय है ना। सबके एक एक आचार्य है ना। ब्रह्म संप्रदाय के कौन आचार्य? किससे शुरुआत हुआ है? ब्रह्मा जी से है ना। और श्री संप्रदाय का लक्ष्मी जी, कुमार चार कुमार, और रुद्र शिव जी, ठीक है। तो जो व्यास देव जी है, ये कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, है ना। ब्रह्मा जी से कौन? नारद मुनि, नारद मुनि से व्यास देव, और व्यास देव के बाद अनेकों बहुत सारे आचार्य हुए, और उसमें मध्वाचार्य हुए, और मध्वाचार्य के बाद माधवेंद्रपुर हुए, माधवेंद्रपुर जिससे हमारा गौड़ीय संप्रदाय शुरू हुआ, इसलिए हमारे संप्रदाय का क्या नाम है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। इन संप्रदाय के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, वैसे आप लोग को मालूम है। तो आज व्यास पूर्णिमा है, व्यास देव का जन्मदिन है, तो व्यास देव का भी बहुत बड़ी कथा है एक्चुअली महाभारत में व्यास देव का भी। तो आज हम सनातन गोस्वामी पाद के बारे में चर्चा करेंगे, फिर से कभी व्यास देव के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन ये व्यास पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्यास देव का जन्मदिन है। और दूसरा, कभी कभी देखिए, हम जन्माष्टमी के बाद हम प्रभुपाद जी का क्या मनाते हैं? व्यास पूजा, है ना। अब या तो अपने गुरु महाराज का व्यास पूजा मनाते हैं। क्यों व्यास पूजा बोला गया है? क्योंकि वह प्रतिनिधित्व, व्यास देव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे आसन जो है, आसन व्यास, उसको व्यास आसन बोलते हैं। क्यों व्यास आसन बोलते हैं? कि उस पे जो बैठने वाला व्यक्ति है वह व्यास देव का प्रतिनिधित्व करता है, है ना। व्यास आसन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति को, व्यक्ति जो है वो व्यास देव का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसको व्यास आसन बोला जाता है, है ना। तो जैसे कि कभी कभी गुरु महाराज के व्यास पूजा होता था, कितना दिन भर महाराज के विषय में ग्लोरिफिकेशन चलता, अनेकों भक्त ग्लोरिफिकेशन करते हैं, फिर पूरा दिन महाराज बैठे रहते हैं, और उसके बाद सब लोग ग्लोरिफिकेशन किए, उसके बाद फिर महाराज का चरणाभिषेक होता, अभिषेक करते हैं सब भक्त लोग मिलके, है ना। सब करने के बाद लास्ट में महाराज एक प्रवचन देते हैं, है ना। उस प्रवचन में जितना भी दिन भर का कार्यकलाप किया गया है वो किसको अर्पण करते हैं? व्यास देव को। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो किसकी पूजा हुआ? उनके माध्यम से व्यास देव की पूजा हुआ, है ना। तो इसलिए महाराज फिर लास्ट में क्या करते हैं? व्यास देव को अर्पण कर देते हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी पाद, जो कि षड गोस्वामी में से एक आचार्य है, जो कि रूप गोस्वामी पाद से बड़े, उनके बड़े भाई थे, उनके ये तीन भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री बल्लभ, या तो उनको अनुपम भी बोलते थे, है ना। तो ये जो छह गोस्वामी हैं, एक्चुअली हमारे गौड़ी संप्रदाय में या गौड़ी परंपरा में इन छह गोस्वामियों का के आधार पे ही हमारा जो है संप्रदाय टिकी हुई है। एक्चुअली भाई देखा जाते ये छह गोस्वामियों को ही कृपा से हमको आज जितने भी धाम यात्रा वृंदावन के तीर्थ स्थल देखने के लिए मिलते हैं, आज इन छह गोस्वामी के ही कृपा से हुआ है। क्योंकि भगवान के लीला समाप्त होने के बाद, लीला समाप्ति होने के बाद निश्चित कुछ समय के पश्चात एक जो जितने भी तीर्थ स्थान है सब लुप्त हो चुके थे, है ना। उसके बाद भगवान कृष्ण के पपुत्र बज्रनाभ जी ने फिर से उन लीला स्थलों को उजागर किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी फिर से वो लुप्त हो गया। लेकिन अभी जो 500 साल पहले ये जो गोस्वामी आए वापस चेतन महाप्रभु के आदेशानुसार, इन्होंने सारे तीर्थस्थलों को अभी जो हम प्रकट रूप में देख रहे हैं ना, जो भी चीजें, ये हमारे गोस्वामियों का ही देन है। इन लोगों ने ही प्रकट कराया है श्री चेतन महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार, है ना। और ये 6 गोस्वामी ऐसे थे कि धीरा धीर, अभी धीरा धीर जनप्रिय है ना, जो धीर व्यक्ति है और जो अधीर है उन दोनों के लिए प्रिय, मतलब जो भक्त है उसके लिए भी प्रिय थे और जो अभक्त है उसके लिए प्रिय थे। इन लोग का इस प्रकार का आचरण और व्यवहार ऐसा था ना कि सब लोग प्रेम करते थे इनसे, और विशेष करके अव्वल नंबर पे सनातन गोस्वामी पाद। सनातन गोस्वामी पाद को पूरे जब भी जितने टाइम भी वो ब्रज में रहे, ब्रज के हर एक भक्त या हर एक व्यक्ति या ब्रजवासी सब लोग उनको प्रेम करते थे, उनको बाबा करके बुलाते थे, बाबा, है ना। आज भी बाबा की पूर्णिमा बोला जाता है, ब्रजवासी बाबा की पूर्णिमा बोलते हैं, है ना। इतना क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद ना वो फेमस थे, 6 गोस्वामी में से फेमस सनातन गोस्वामी पाद थे, जो कि जिससे कि सब बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के पर्सनल मैटर को जाकर उनके सुनते थे, बात करते थे, उनको सोल्यूशन देते थे, चाहे वो भक्त हो ना हो, सबके पास जाते थे, बहुत प्रेम से मिलते थे ऐसा। इसलिए सब ब्रजवासी लोग बहुत प्रेम करते थे उनको, और ये प्रचंड विद्वान थे, है ना। दोनों सनातन और रूप तो प्रचंड विद्वान थे लोग। इनका एक्चुअली इनका जो पहले जन्म कर्नाटक में रहते थे लोग, कर्नाटक में, लेकिन बाद में कुछ तो घर का क्लेश और इत्यादि वजह से ये लोग ने घर छोड़कर, इनका नाम था पहले क्या नाम था, संतोष और अमर, है ना। संतोष मतलब सनातन गोस्वामी पाद और अमर मतलब रूप गोस्वामी पाद। तो ये दोनों भाई कुछ घर के क्लेश की वजह से ये लोग ने छोड़कर बंगाल चले गए, है ना, पूर्व बंगाल, जो कि अभी बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, है ना, वहां पे जाकर रह रहे। उस समय वहां पे मुसलमानों का, उस समय मुसलमानों का राज्य चल रहा था। जो राजा था उसका नाम था नवाब हुसैन शाह जलाउद्दीन, इतना बड़ा नाम था उसका, जितना बड़ा नाम उतना अधम काम भी था उसका, है ना। तो ये जो राजा था ना, एक्चुअली बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था, विशेष करके जो हिंदू लोग थे और जो ब्राह्मण थे, जो अच्छे कार्य करते थे उनको बहुत कष्ट देता था, उनको बहुत तकलीफ देता था, उनको मारता था वो, है ना। तो ये इतना दुष्ट प्रवृत्ति का था कि एक बार उसके दरबार में ना एक मिस्त्री आया, कारीगर। एक्चुअली क्या है, पहले ना बहुत ऐसे शिल्पकार लोग थे जो पुराने जमाने में, जो कि बहुत हाथ से जो ना बहुत अच्छा वो लोग कार्विंग डिजाइन किया करते थे, ऐसे शिल्पकार बहुत सारे लोग थे। तो लेकिन ये मुसलमानों ने उन लोग को, बहुत सारे शिल्पकारों को ना मार दिया एक्चुअली, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे शिल्पकार पुराने जमाने के मिलेंगे। जब भी मैं मीरा रोड के स्वामी मकराना में जब था मंदिर मार्बल की सेवा में, तो वहाँ पर जब मैं कार्विंग कराता था, ऐसे कई मिस्त्रियों से मैं मिला जो कि बहुत पुराने बूढ़े हो चुके, बुजुर्ग हो चुके, लेकिन आज भी वो ऐसे ऐसी कार्विंग करते हैं ना जो कि कोई पर नहीं। आप देखेंगे कि पुराने पुराने मंदिरों में ऐसे ऐसे आपको कार्विंग होगा, विश्वास नहीं होगा कि हाथ से कार्विंग किया गया है ना, जो कि आज के समय में संभव नहीं है वो, है ना, ऐसे ऐसे कार्विंग किया। तो इस प्रकार के लोग हुआ करते थे पहले। तो ये जो एक मिस्त्री था, वो राजा हुसैन शाह के दरबार में ये मिस्त्री आया, और उन्होंने राजा की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर उसके दरबार में एक स्तंभ बना के दिया, कार्विंग किया हुआ ना एक स्तंभ, जैसे गरुड़ स्तंभ होता है ना, साउथ के मंदिर में जाएंगे तो गरुड़ स्तंभ रहता है, तो ऐसे ही उसके दरबार में उसने एक स्तंभ बना के दिया। और स्तंभ बना के दिया, और वो राजा को इतना अच्छा लगा, राजा इतना प्रसन्न हो गया कि वो प्रसन्न होकर उसने क्या किया, बहुत सारे उसको उसके लिए खेत उसको दे दिया, बहुत सारे आभूषण दिया, बहुत सारे मुद्राएं दिया, इस प्रकार के बहुत सारे रत्न उसको दे दिया प्रसन्न होकर राजा। कौन राजा? राजा हुसैन शाह जलाउद्दीन, नवाब हुसैन जलाउद्दीन, पूरा नाम था नवाब हुसैन शाह बादशाह जलाउद्दीन। तो उसने बहुत सुंदर स्तंभ, राजा बहुत प्रसन्न हो गया, और इस प्रकार से वो जो शिल्पकार था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि बहुत गरीब था, इतना सारा कुछ मिल गया उसको भी खुशी की सीमा नहीं रही, लेकिन इतना सारा जब भी मिल गया उसको तो वो खुशी खुशी अपना खुशी प्रकट किया उसने भी, और किया कि अरे प्रभु, मैं तो ये जो स्तंभ बनाया इससे भी अच्छा स्तंभ बना सकता हूँ, इससे अभी आप बताइए कहाँ पे बनाना, इससे भी अच्छा स्तंभ बना सकता हूँ। अभी क्या हुआ, उसी समय राजा ने उसको तुरंत मरवा दिया, तुरंत मरवा दिया। क्यों? क्योंकि ये रहेगा तो कहीं ना कहीं इससे भी अच्छा बनाएगा, इसलिए तुरंत मरवा दिया। तो इस प्रकार का वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था वो, है ना। मुसलमानों का राज भी था और विशेष करके वह ब्राह्मणों और भक्तों के ऊपर बहुत वो अत्याचार करता था। तो लेकिन बीच में हुआ क्या कि ये जो दोनों भाई थे, रूप सनातन, संतोष और अमर, इनके बारे में उसने सुना अपने मंत्रियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये लोग ना बहुत प्रचंड विद्वान थे। ऐसा नहीं कि वृंदावन में जाने के बाद ही लोग इनसे प्रेम करते थे, एक्चुअली ये बहुत विद्वान होने के नाते ना इनसे, इनको सब लोग जानते थे एक्चुअली कि बहुत प्रचंड विद्वान है। तो उस राजा के मंत्री ने कहा हुसैन शाह के दरबार में कि अगर वो दोनों भाई आपके दरबार में अगर आके काम पे लग जाएं तो निश्चित रूप से आपका बहुत प्रगति हो जाएगा, और विशेष करके आप जहाँ पे भी युद्ध करने जाते हो कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत बुद्धिमान हैं, है ना। तो इसलिए फिर राजा ने तुरंत उन दोनों को बुलाया अपने दरबार में, और अपने दरबार में बुलाया और उनको, एक को मंत्री एक को वित्त मंत्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, दो चीज बनाने के लिए उसने बोला उन्होंने। तो लेकिन इन दोनों भाइयों ने मना कर दिया कि हमको इस प्रकार का कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे चीज़ें बोला, क्योंकि वो थे ब्राह्मण और वो एक मुसलमान दरबार में इस प्रकार का मंत्री इस प्रकार का कार्य करेंगे तो किस प्रकार होना पतन हो गया ना फिर तो। तो इसलिए उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन ये राजा इतना खतरनाक था कि वो क्या किया कि उन लोग को धमकी दिया, अगर तुम लोग, तुम तो मारे ही जाओगे लेकिन साथ साथ में और भी अत्याचार मैं बढ़ा दूंगा, है ना, जितने भी ब्राह्मण है वो सबको मरवाना चालू कर दूंगा। तो इस प्रकार का जब धमकी दिया तो ये दोनों भाई ने फिर उनके सेवा को स्वीकार किया, है ना। जैसे ही सेवा को स्वीकार किया तुरंत ही हुसैन शाह ने क्या किया, इनका नाम चेंज कर दिया, दबीर खास और साकर मल्लिक, है ना, दीक्षा दे दिया। ये हुसैन शाह का दीक्षा प्रोग्राम है ना, दबीर खास और साकर मल्लिक, साकर मल्लिक मतलब सनातन गोस्वामी पर दबीर खास, है ना। तो तुरंत ही उसने दीक्षा दे दिया और नाम बदल दिया। और उसके बाद अभी सोचिए आज का कितना बड़ा पोस्ट दिया, है ना, एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक को फाइनेंस मिनिस्टर। सोचिए ऐसा ऑफर आज के समय में किसी को मिल जाए, सोचिए एक छोटा से एमएलए वगैरह बनने के लोग कितना मेहनत करते हैं, हैं, ये लोग को तो ऑफर मिला है बनने के लिए। आज के समय में किसी को ऐसा मिल जाए तो सोचिए वो तो आसमान में ही उड़ेगा, है ना। तो लेकिन क्या है, आज के समय का स्थिति ऐसा है कि लोग बनते तो हैं लेकिन उस गद्दी को वापस छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये आगे देखेंगे इन लोग के जीवनी में कि इन लोगों ने किस प्रकार से एक काम करते हुए जो मजबूरन उनको करना पड़ा लेकिन फिर भी उससे विरक्त रहे, है ना। लेकिन आज के समय में आज की स्थिति ऐसा है कि कोई एक बार बनता है तो वो पोस्ट तो छोड़ना ही नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए। अगर वो मान लो लेक्चर देते थे तो वो ये भी बोल रहा है कि अभी आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो कि प्रवचन देते थे तो ऐसा ही बोले कि बहुत हो गया, अभी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी वृंदावन जाऊंगा या फिर जपा करूंगा या तो फिर ये सबसे बैराग ले लूंगा, ऐसा कभी सुना कभी? अगर वो बोल रहा है ना ऐसा तो कुछ तो प्रॉब्लम है उसके पीछे, कुछ तो रीजन रहेगा तभी बोलेगा। या तो हो सकता है कि उसके सीट के नीचे किसी ने बम लेके धमकी दिया हो कि इस प्रकार का बोलेगा, नहीं तब बोलेगा, नहीं तो कोई ऐसा बोलता नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से धमकी, एक्चुअली जी हमारा जीवन ही हर व्यक्ति का इसी प्रकार से है एक्चुअली, है ना। देखिए समस्याएं ना व्यक्ति के जीवन में हमेशा लगा रहता है ना, ऐसा नहीं है कि आज अभी मैंने बम की बात किया ना तो मुझे स्मरण आया कुछ सालों के पहले ना जब मैं बॉम्बे में था तो उसमें बम ब्लास्ट हुआ था, पता है, ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था। देख तो उसमें जितने भी फर्स्ट क्लास में हुआ था और अपने कुछ बंद अपने डिओटीज थे बहुत सारे उस डब्बे में,
मेरे फादर के फ्रेंड्स थे।
अच्छा, तो उस समय बहुत सारे डिओटीज भी थे उसमें, और ब्लास्ट कहाँ पे हुआ, फर्स्ट क्लास, मतलब जो लोग फर्स्ट क्लास में गए तो उनको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिला। तो कभी भी किधर भी फर्स्ट लगा भरोसा नहीं किधर, अभी हो सकता है कि किसी और के लिए किया गया उसमें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे अनायास मारे जाते हैं। तो उस समय जो डिओटीज थे ना, हालांकि थोड़ा बहुत चोट आया था उन लोग को, लेकिन कोई भी मरा नहीं था, बहुत सारे लोग मरे थे। और एक ड्योटिस थे वहाँ पे जो कि वो बैठे थे और जप कर रहे थे, आजू बाजू दो लोग और बैठे थे उनके, है ना, तीन चार चार सीट लोकल ट्रेन में, तो जप कर रहे थे। और जप करते करते अचानक तो उनको नींद आ गया, नींद आ गया तो ऐसा नींद किया, और जब ब्लास्ट हुआ ना, बताया उसी समय ब्लास्ट हुआ, उनका वो एक्सपीरियंस बता रहे थे कि उसी समय ब्लास्ट हुआ और मैंने ऐसा सो गया ना, ब्लास्ट जो हुआ तो उसके जो स्पार्क थे ना, जिनके पास जाता था वो खत्म हो जाता था, तो जब ही वो किया ना तो जो स्पार्क था ना वो ऊपर से चला गया, और लेफ्ट राइट उनके जो बैठे थे दोनों मरे और उनके गोद में गिर गया। जब गोद में गिरे तो उनको नींद खुला, उनका ऐसा नींद खुला, देखे दो मर गए ऐसा सोचिए। तो मैं उस समय मैं सोचा था ऐसा, सुना था जब ये बात ना, तो मुझे वो ऐसा लगा था कि देखो अगर नींद में भी जप किया जाए तो कितना कितना फायदा बन गया, भगवान ने बचा लिया उनको, है ना, कितना बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ के आजू बाजू के दोनों मर गए लेकिन वो बच गया। तो इस प्रकार से देखिए समस्याएं जीवन में कभी भी हो सकती है। देखिए एक ही जगह पे समस्या नहीं निर्भीक रह सकते, जहाँ पे भगवान के नामों का कीर्तन और कथा और जप चलता हो वहाँ पे निर्भीक आप बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी हुआ भी तो भगवान बचाएंगे, या तो कुछ ना कुछ भगवान अपने धाम में लेके जाएंगे, एक ही जगह सेफ है। तो इस प्रकार से ये रूप संतोष और अमार को क्या किया, दीक्षा दे के हुसैन शाह ने अपने दरबार में उनको दबीर खास और साकर मल्लिक के रूप में प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ने बहुत सुंदर से, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने इस सेवा को स्वीकार किया, हालांकि उससे उसमें रमे नहीं थे, उससे वो मुक्त ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काम बहुत अच्छा किया उसके प्रगति के लिए। जब ही जितने दिन वो लोग थे इस पोस्ट में, उस राजा का बहुत प्रगति हुआ, है ना, कभी भी हारा नहीं वो राजा, कभी भी नहीं हारा, जिधर भी गया वो जीत करके आया। तो लेकिन फिर भी उनके जो दोनों के मन में ना इस प्रकार का कि हमने बहुत गलत काम किया है, है ना, एक मुस्लिम राजा के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कितना बड़े पापी है, इस प्रकार का। इसलिए वो लोग जब घर जाते थे, उनका घर जो था ना वो वृंदावन के जैसा बना के रखे थे, और घर में फिर बाकी सारे नियमों का पालन करते थे, सब करते थे, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक ऐसा था, बहुत ग्लानी था कि हम लोगों ने कौन सा पाप किया रहेगा कि इस प्रकार का हमको काम मिला है। तो मन ही मन वो लोग बहुत प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते करते एक समय की बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राम, वो लोग रहते थे राम केली में, तो चैतन्य महाप्रभु राम केली में, पूरी से राम केली में आए थे। तो जब इन दोनों को पता चला, दोनों भाइयों को, तो अभी देखे आए हैं करके वो दिन में जा नहीं सकते, क्योंकि दिन में काम रहता है उनका दरबार में, और जाएंगे भी तो राजा को पता चल जाएगा किस काम के लिए गए, एक सन्यासी को मिलने के लिए गए, और तुरंत क्या करेगा राजा, मार देगा। तो इसलिए वो लोग रात को छुप के वैष्णव वेशभूषा में और अपने दांत में त्रिर मतलब घास का टुकड़ा रतिन का रखते हुए वो श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए, और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, और बहुत ही वहाँ पे चेतन महाप्रभु को प्रार्थना किया कि हम बहुत बड़े पापी है, हमारा उद्धार करिए, देखिए मैंने हम लोगों ने कौन सा गलत काम किया था कि इस प्रकार से हुसैन शाह के दरबार में हमको काम करना पड़ रहा है, आप हम लोग के ऊपर कृपा करिए, यहाँ से निकालिए, हमको बचाइए। अरे आप, हमने सुना कि अभी अभी आप नवदीप में से जगाई और मघाई का उद्धार करके आए, और जगाई मघाई का उद्धार तो किए प्रभु, लेकिन आपका पतित पावन नाम तभी सिद्ध होगा जब आप हमारा उद्धार करेंगे। क्यों? क्योंकि जगाई मघाई ने कभी क्या किया था, कभी गौ हत्या नहीं किया था, ब्राह्मणों को मारा था लेकिन गौ हत्या नहीं किया था, और इस प्रकार का गौ हत्या करने वाला, गौ मांस खाने वाला का कभी चापलूसी नहीं किया था, तो इसलिए हम उससे भी पापी हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करिए, तब जाके आपका जो पतित पावन नाम है जो सार्थक होगा। तो इस प्रकार से बहुत चैतन्य चैतन्य में बहुत वर्णन है कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पकड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, और इस प्रकार से फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को उठाया, और उठाने के बाद उनको बताया कि किस प्रकार से तुम लोग को अभी राज दरबार में रहना है, समय आने पर मैं तुम दोनों को बुला लूंगा। और उन्होंने उदाहरण दिया जो श्री प्रभुपाद जी हर बहुत सारे तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से एक पत्नी है किसी और से आसक्त है तो अपने घर और पति को अच्छा संतुष्ट रखती, घर का काम अच्छा करती है ताकि पति को डाउट ना हो, इसलिए तुम लोग भी राज दरबार में रहते हुए इस प्रकार का रहो, राजा को डाउट नहीं हो, लेकिन समय आने पर मैं तुम लोग को बुलावा देता हूँ, समय आने पर हम तुम दोनों को बुला लूंगा। तो इस प्रकार से कुछ दिनों के पश्चात मतलब चैतन्य महाप्रभु चले गए वहां पे, चैतन्य महाप्रभु के इन दोनों भाइयों ने सतर्क भी किया प्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जहां पे भी जाते थे ना, चैतन्य महाप्रभु का कांति ना, कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम चर्चा करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का कांति इतना तेज था ना, लोग ऐसे ही उनसे प्रभावित हो जाते थे, है ना, चाहे वो भक्त है नहीं है साथ में चल देता था, इतना आकर्षित लगते थे, इतना तेज था उनके शरीर से तेज निकलता था ना, अनायास ही लाखों की संख्या में लोग चलते थे, चैतन्य महाप्रभु किधर भी निकले ना तो उनके पीछे 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 पूरा गांव निकल जाता था, है ना, इतना आकर्षित करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए जब राम के लिए आए भी थे चैतन्य महाप्रभु ना, तो बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग थे, और इन दोनों ने सतर्क किया कि हुसैन शाह को जैसे ही पता चलेगा प्रभु, इन सारे लोग को वो बहुत दंडित करेगा, मार डालेगा, इसलिए प्रभु आप यहाँ से शांति से निकल जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, और चाहिए किधर तो अकेले जाइए, अभी यहाँ सबको सबको छोड़ दीजिए और अकेले चले जाइए प्रभु, ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु ने वहां से फिर निकल के पूरी चले गए चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद कुछ समय के पश्चात पूरी से वह वृंदावन गए, और उस समय क्योंकि इन दोनों लोग चैतन्य महाप्रभु कहाँ है क्या कर रहे हैं इस प्रकार का अपडेट हमेशा रखते थे दोनों, है ना,
तो
हाँ इस प्रकार रखते थे, मंत्री थे ये लोग, बहुत विद्वान थे, और किसी न किसी माध्यम से ये लोग रखते थे ऐसा। तो रूप गोस्वामी पाद को ये जैसे पता चला कि चैतन्य महाप्रभु अभी पूरे से वृंदावन जा रहे हैं, तो तुरंत ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे के रूप गोस्वामी पाद तो निकल पड़े, निकल पड़े कहाँ, वृंदावन के लिए, वृंदावन निकल पड़े, और वहां पे फिर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद उन्हें भी कुछ समय के पश्चात उन्होंने सोचा कि मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ अभी, क्योंकि अभी समय बीतते जा रहा है और मैं अभी रहा है तो कब मृत्यु हो जाएगा पता नहीं, तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत फिर बहाना बनाना शुरू किया, है ना, कि बुखार आ गया, बुखार आ गया करके ऐसा दरबार में इन्फॉर्म करके वो घर पे रह के भागवत पढ़ते थे। तो कुछ दो चार दिनों के बाद पता चला हुसैन साहब को कि सनातन बीमार है, साकर मल्लिक बीमार है, तो बीमार है, तो उसने बहुत बड़ा वैद्य को भेजा, जाओ उसको ठीक करो, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो मेरा दरबार चलेगा नहीं उसके बिना। तो वैद्य जाके देखा, वैद्य जाके उनको चेकअप किया, तो पता चला कि इनको तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, ये परंपरा पहले से ज़्यादा, अगर आपको यात्रा जा रहा था तो बीमारी का लीव लगा, अप्लीकेशन लगा सकते हैं, बीमार पड़ गए अभी छुट्टी दे दो, हाँ चार दिन का छुट्टी, फिर वृंदावन यात्रा करके आ सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद बीमारी का बहाना बनाने लगे और घर पे बैठ के भागवत पढ़ते थे। लेकिन जब ही सच्चाई पता चला हुसैन साहब को कि अरे अभी ये तो नौकरी करना ही नहीं चाहता है, तो उसने बहुत प्रयास किया पहले, बहुत मतलब उसको उनके लिए बहुत सारे लुभावने प्रस्ताव दिए, ऑफर्स दिए, बहुत सारे पहले तो खुश करने का प्रयास किया, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद ने सोच लिया कि अभी नहीं तो नहीं, जो भले से मेरे प्राण चला जाए अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उसके बाद क्रोधित होने लगा हुसैन साहब, है ना, राजा क्रोधित होने लगा, और तुरंत ही देखा कि अगर अभी इसको नहीं पकड़ा मैं तो निश्चित रूप से ये भी किधर भाग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक भाग चुका है ना, उसने क्या बड़े ये अपना त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो फिर देख के तुरंत वो निकल गए ऐसा, लेकिन अभी इसको मैं नहीं पकड़ूंगा तो ये भी हाथ से चला जाएगा, तो तुरंत ही अपने और भी मंत्रियों को बोल के तुरंत ही सनातन गोस्वामी पाद को जेल में डाल दिया, हुसैन शाह जेल में डाल दिया, और जेल में डाल के उसी समय उसको कहीं पे तो लड़ाई करने के लिए जाना था, उसको कहीं पे लड़ाई करने के लिए जाना था, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहा था क्योंकि मैं लड़ाई पे जाने वाला हूँ, अभी ये साथ नहीं दिया तो निश्चित रूप से मैं हार जाऊंगा ऐसा करके, लेकिन फिर सनातन गोस्वामी कन्विंस नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया, उस जेल में डाल दिया, और जेल में डाल दिया, फिर भी ये मंत्री थे और अभी फाइनेंस मंत्री तो निकल चुके हैं, है ना, लेकिन उनको लिए बहुत सारे मुद्राएं और ये सब रख के गए थे किसी एक दुकानदार के पास, क्योंकि उनको मालूम था कि सनातन गोस्वामी पाद को ये काम आएगा बाहर निकलने के लिए, इसलिए बहुत सारी मुद्राएं वो रख के गए थे। तो सनातन गोस्वामी पाद अभी जेल में है और उन्होंने बहुत सारे प्लान, उस समय हुसैन शाह लड़ाई पे निकल चुका था, तो जो जेलर था उसको कन्विंस करने लगे, देखिए देखो आज कल मैं मंत्री था, तुम मेरे अंडर में थे, लेकिन आज मैं देखिए आज मैं जेल में हो गया हूँ, तो कृपया मुझे जेल से बाहर निकलने का तुम करो, उसका ग्लोरीज किए, क्योंकि मंत्री बुद्धिमान थे ना, इसलिए उसको पहले इस प्रकार का उसका ग्लोरीज किए कि उसको वो अपने फेवर में ले लिए, अपने फेवर में ले लिए, और इस प्रकार से फिर करके उसको खुश किए, और बहुत सारे जो मुद्राएं थी ना जेलर को दे दिया, उसने ले भी लिया और छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन बाद में उसके मन में प्रश्न हुआ कि अगर हुसैन शाह जब आएगा तो कैसे भागा, क्यों भागा, तुम तो जेलर था, हमको पकड़ेगा था, हमको तो मार डालेगा, फिर ये पैसा कौन से काम का। तुरंत ये सोचा, तब उसने तुरंत ही बोला कि प्रभु मैं तो छोड़ दूंगा आपको, लेकिन अगर हुसैन शाह आएगा तो क्या जवाब दूंगा उसका मुझे बताइए। तो फिर सनातन गोस्वामी पाद ने बोला कि उसका भी उपाय मैं बताता हूँ तुमको। देखो, शौच क्रिया आदि के लिए तुम हमको जंजीरों में बांध के लेके चलते हो, बाहर लेके जाते हो, तो बोलना कि गंगा में डूब के मर गया हो, है ना, मैंने बहुत खोजा और निकला नहीं और मर गया, इस प्रकार का तुम हुसैन साहब को बता देना। और इस प्रकार से उसने जेलर को इस प्रकार करके सनातन गोस्वामी पाद निकल के चले गए। साथ में उनका सेवक ईशान, उनका सेवक था, वो साथ में गया था। तो उसने क्या किया था, कुछ मुद्राएं ना अपने पास रखा हुआ था। कौन? ईशान। अभी सनातन गोस्वामी पाद को लगा था कि सब कुछ जेलर को दे के हमने निकल गए, अभी फ्री हो गए, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, कुछ कुछ आपकी भाषा में कुछ गुंडे लोग, हाँ, लुटेरे लोग, उन्होंने क्या किया, उन लोग को उन घेर लिया, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि लोग के पास मुद्राएं हैं। करीब 8 सोने की मुद्राएं थी जो कि ईशान ने अपने पास छुपा के रखा था कि रास्ते में काम आएगा, है ना। हम बहुत प्लान करते हैं ना कि इस प्रकार का सोचते हैं ना कि आगे 4 दिन के बाद कुछ होगा तो उस समय काम आएगा, इस प्रकार का छुपा छुपा के रखते हैं। तो ईशान ने रखा था छुपा के रखा था, और उसके पीछे गुंडों को पता चला। अभी गुंडे लोग तो यही सब करते रहते हैं, उनको तो इंक्वायरी करना था कहाँ पे लूट मार के लिए मिलेगा माल। तो उन्होंने उनको घेर लिया, और उनका घेरना ही नहीं, उनको ये पूरा प्लान था कि इन दोनों को मारना है, जान से मार के जो मुद्रा है लूट लेना है। तो जैसे ही वो लोग आए, इस भाव से आए थे, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद समझ गए कि ऐसे लोग आए मतलब कुछ न कुछ तो लोचा है, और तुरंत ही ईशान को पूछा, तुम्हारे पास कुछ मुद्राएं हैं क्या? तो बोला कि हाँ मेरे पास मुद्राएं हैं। कितना है? 7 मुद्राएं, हालांकि 8 था लेकिन फिर भी एक छुपा लिया, और उसके बाद 7 मुद्राएं है करके बोला कि इन लोग को दे दो, इन लोग को दे दो। और इन लोग ने उनको आक्रमण करने से पहले सनातन गोस्वामी पाद ने ईशान को बोल के सारी मुद्राएं उनको दिलवा दिया कि आप हमको छोड़ दीजिए, हमको आगे जाने दीजिए, और बड़ी मुश्किल से निकल के आया, अभी आप लोग इधर फंसा रहे हो, मुझे सब कुछ दे दिया। और फिर ईशान और सनातन गोस्वामी पाद निकल गए। कुछ देर के बाद सनातन गोस्वामी पाद को डाउट हुआ कि अभी भी कुछ होता है लगता है, क्योंकि ईशान ने इस प्रकार किया, निश्चित रूप से कुछ न कुछ और रखा रहेगा। फिर से पूछे, बहुत प्रेम से पूछे, ईशान कुछ मुद्रा बच गया है क्या? बोला कि हाँ एक मुद्रा बचा है, मैं मतलब इमरजेंसी के लिए रखा हूँ एक मुद्रा। बोला कि ये अभी सबसे बड़ा इमरजेंसी है, एक काम करो तुम उस मुद्रा को लेके यहाँ से निकल जाओ और मुझे आगे जाने दो। तो वो मुद्रा उसको दिए, बोला कि तुम जाओ, और फिर सनातन गोस्वामी पाद निकल गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जब तक ये भौतिक का त्याग नहीं करेंगे तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गए, और तो गए कहाँ पे, बनारस गए, और बनारस में वहाँ पे विश्वनाथ जी का दर्शन किए, और चंद्रशेखर आचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु है करके वहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद पहुँचे। और पहुँचे तो मैंने बताया ना कि बाहर बैठे चंद्रशेखर आचार्य आए, बाहर देख के गए दो बार, कोई वैष्णव नहीं है, लेकिन बाद क्योंकि उनका दाढ़ी बढ़ गया था और एकदम भिखारी के जैसा था, कितने दिन का ट्रेवलिंग किए हुए थे, कुछ रास्ते में खाना पीना कुछ नहीं। रास्ते में उनके एक बहन थे, उनका बहनों ही था, वो मिले थे, क्योंकि उनको ठंड का समय था, उनको ठंड लग रहा था, और कुछ कपड़े नहीं तो सब फट चुके थे, कपड़े जो भी पहने थे पतले कपड़े थे फट चुके थे। तो उस समय उनका बहनों ही ने उनको क्या एक शॉल दिया था, बहुत सुंदर सा शॉल दिया था, है ना, सिल्क का बहुत सुंदर शॉल दिया था। उस शॉल के सारे वो पहुंच गए थे वहां पे, तो शॉल ओढ़े थे लेकिन पूरा एकदम गंदा शरीर था, पूरा इस प्रकार के थे। फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अंदर बुलाया, और अंदर बुला के तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। और फिर वो सनातन गोस्वामी पाद, प्रभु दूर रहिए, हम कितना हम बहुत पापी हैं, ऐसे पापी को गले मत लगाइए आप, अपने इस प्रकार का वो व्यक्त करने लगे, है ना, कितना पूरा स्मरण का है कि किस प्रकार का हमने कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा पाप किया है, हुसैन शाह के दरबार में हमको इस प्रकार का ऐसा ऐसा करके, प्रभु आप हमको मत छुइए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु तो इसी में इसी के लिए फेमस है कि वो जो पापी है उनको उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो तुरंत ही उनको सेव क्लीन किया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे 2 महीने सनातन गोस्वामी को बात को 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं उसके। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनको शिक्षा देने लगे ना, तो चैतन्य महाप्रभु बार बार उनको घूर के देख रहे थे सनातन गोस्वामी पाद को। तो उनको डाउट होने लगा सनातन गोस्वामी पाद को, कुछ तो प्रॉब्लम है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का क्यों घूर के देख रहे हैं। तब वो समझ गए कि अभी ये जो सिल्क वाला साल है ना, ये चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है। तो उन्होंने तुरंत ही बाहर निकले और किसी एक भिखारी को शॉल दिया और उससे पुराना शॉल लेके आ गए और ओढ़ के आ गए। फिर चैतन्य महाप्रभु के ओठों पर मुस्कान आया। तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने तक बनारस में दशाश्वमेध घाट पे सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया, जो कि सनातन शिक्षा के नाम से प्रचलित हुआ। और प्रभुपाद जी उसको चैतन्य शिष्टा टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा मृत, उसके अंदर जो वर्णन है वो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को जो शिक्षा दिया है वो टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य के अंदर प्रभुपाद जी ने रखा हुआ है। तो आप वहाँ पे उनका संवाद पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद जो कि पहुंचे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु 2 महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु का आदेश, जाओ आप वृंदावन। वृंदावन में जाकर विशेष करके चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा ताकि वृंदावन में जितने भी लीला स्थलियां उसको प्रकट कराने के लिए, प्रकटित कराने के लिए उन्होंने वृंदावन सब उनको भेजा। तो सनातन गोस्वामी बाद वृंदावन गए और वृंदावन में वह भजन कुटी, एक छोटा सा कुटिया में भजन करने लगे, है ना। और चैतन्य सनातन गोस्वामी बाद का रूटीन ऐसा था भजन का कि वह सुबह उठते, वृंदावन में रहते थे, सुबह उठते थे अपना क्रियाकलाप करके। वो क्या करते थे, सुबह उठ के कहाँ जाते थे, गोवर्धन, पैदल गोवर्धन जाते थे और गोवर्धन जी का परिक्रमा करते थे और परिक्रमा करके मथुरा जाते थे और मथुरा में मधुकरी करते थे और मधुकरी करके वापस वृंदावन आते थे और भजन करते थे। ये टोटल पैदल होता था, मैं बताता हूँ कितना, वृंदावन से गोवर्धन 22 किलोमीटर और गोवर्धन परिक्रमा 22-23 किलोमीटर और उसके बाद वहाँ से और 20 किलोमीटर मथुरा, फिर मथुरा में मधुकरी करते थे। क्यों मथुरा में मधुकरी करने के लिए जाते थे, क्योंकि मथुरा में समर्थ लोग रहते थे जिन जो कि दान दे सके, है ना, भिक्षा दे सके, बाकी और कहीं पे ऐसे लोग रहते नहीं थे, सब लोग गरीब थे, इसलिए वो मथुरा में जाते थे, है ना, क्योंकि मथुरा में कंस मथुरा में रहता था ना राजा था, तो वहाँ पे समृद्ध लोग थे, तो वहाँ पे जाके वो भिक्षा मांगते थे। तो जो भी भिक्षा मांगा उसको लेके अपने वृंदावन में वापस आते थे, कितना 10-12 किलोमीटर वापस आके अपने कुटी में उसको ग्रहण करते थे और भजन करते थे। ये उनका रूटीन था सनातन गोस्वामी पाद का, है ना। तो पूरा दिनचर्या उनका यही था। तो इस प्रकार का करते करते एक बार की घटना है, समय हो गया, पूरा करो या फिर
पूरा।
तो एक बार की घटना है कि सनातन गोस्वामी पाद गोवर्धन परिक्रमा किए, उसके बाद पहुंचे मथुरा में मधुकरी करने के लिए। तो मधुकरी करने के लिए पहुंचे तो वहां पे उन्होंने कुछ दृश्य को देखा, एक दृश्य को देखा कि एक चौबे परिवार था, परशुराम चौबे नाम था उन लोगों का। उस परिवार में 2 बालक खेल रहे हैं, है ना, 2 बालक खेल रहे हैं और उन्होंने क्या दृश्य देखा कि एक बालक जो है दोनों खेलते खेलते उसमें जो हारता था वो क्या करता था, जो जीतता उसको अपने कंधे पे बैठा के लेके चलता था, है ना, घोड़ा बनता था घोड़ा। तो उन्होंने ये दृश्य देख रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था और वो दृश्य देखते देखते उन्होंने इतना अच्छा लगने लगा कि वो डेली जो उनका मांगने के रूटीन में ना वो घर के पास तो जाते ही थे कि डेली उनका दर्शन करना है करके। तो दूसरे दिन गए, उन्होंने एक फिर से दृश्य देखा और ये दृश्य देखा कि उसमें जो एक दूसरा बालक था उसका मदन नाम था और एक चौबे का जो बालक था उसका कुछ और नाम था। तो जो जब मदन हारा तो क्या हुआ, वो बालक जिद करने लगा कि अभी तुम घोड़ा बनो मैं तुम्हारे बैठ बैठूंगा, है ना। तो लेकिन मदन ने सुना नहीं और तुरंत ही क्या हुआ, उस चौबे परिवार के अंदर जो घर था वो मंदिर था, उस मंदिर में मदन चला गया, वापस नहीं आया और बालक ढूंढते रहा। तो इस प्रकार से अभी आए तो क्लास का टाइम बढ़ जाएगा ना, तो ये दृश्य से सनातन गोस्वामी पाद देखते और डेली वो दृश्य को देखने के लिए जाया करते थे कि किस प्रकार से वो दोनों बालक खेल रहे हैं, इस दृश्य को देखने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन की घटना है कि उन्होंने ये देखा कि इन दोनों का जो माँ है ना वो क्या कर रही है कि उनको कुछ खिला रही है और वो कैसे खिला रही है, कुछ खिचड़ी बनाया था जो भी कुछ बनाया था, तो अपने दातुन कर रही है और दातुन से उसको हिला के और ठंडा करके उन लोग को खिला रही है। तो ये जो है सनातन गोस्वामी पाद को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद समझ गए थे कि, क्योंकि उन्होंने ये दृश्य देख लिया था कि मदन किस प्रकार से अंदर गया वापस नहीं आया, और वो लड़का खोज रहा है और पुजारी डांट के भगा दिया, अरे इधर कोई नहीं आया है ना, ये दृश्य देखे थे, वो समझ गए थे कि ये और कोई नहीं है, ये तो भगवान है, और इस प्रकार से इस चौबे परिवार के घर के अंदर वो इस प्रकार के खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो वो समझ गए थे कि ये भगवान है, इसलिए वो डेली आके दर्शन करते थे वहाँ पे। और ये दृश्य जैसे ही देखा कि माता किस प्रकार से उनको कलेवर खिला रही है, तो उनको अच्छा नहीं लगा है ना, कि अरे भगवान है और उनको इस प्रकार से दातुन कर रही है, उससे संधा कर रही है और खिला रही है, तो उन्होंने माता को शिक्षा देने लगे है कि आप इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, और ऐसा ऐसा करो, ऐसा खिलाओ, नहा धो के अच्छे से बनाना चाहिए, फिर करना चाहिए, किस प्रकार से खिलाना चाहिए, इस प्रकार के उनको समझाने लगे। तो दूसरे दिन में माता, वो सरल लोग थे, गांव के लोग थे, सरल लोग थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्रभु, मैं बाबा जी थे वो, और उनकी बातों को सुनकर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ऐसा ही करेंगे अभी। तो दूसरे दिन वो फिर से सनातन गोस्वामी पाद पहुँचे, तो देखे कि दोनों बालक बहुत रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, बहुत लेट हो गया खाना मिल रहे, प्रसाद खाना खाने के लिए कुछ मिला नहीं, क्यों लेट हुआ, क्योंकि अभी वो नहाने धोने में तैयार होने में सब करने में बहुत लेट हो गया उसको, हाँ लेट हो गया तो फिर अभी उन लोग चिल्ला रहे, बच्चे को टाइम पे खाना चाहिए, और चिल्ला रहे रो रहे, और सनातन गोस्वामी पाद ने देखा रही मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, वापस माँ के पास गए, बोले कि आप जैसे खिला रहे थे ना वैसे खिलाइए, वो ठीक है आप, वो शायद प्रभु आपसे ऐसा ही सेवा लेना चाहते हैं, आप वैसे ही खिलाइए। तो इस प्रकार का उनको उपदेश देके जैसे ही सनातन गोस्वामी पाद वहां से निकले, तुरंत जो मदन बालक था वो तुरंत जिद करने लगा कि बाबा जी आपके साथ मैं चलूंगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद को पूरे ब्रजवासी उनको बाबा बोलते थे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ब्रजवासी लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे, है ना, इस प्रकार का उनका व्यवहार था ना कि वो छठ गोस्वामियों में से सबसे अव्वल नंबर पे थे, उनको हर एक व्यक्ति प्रेम करता था, है ना। तो आज जो पूर्णिमा बाबा की पूर्णिमा से नाम से फेमस है, आज गोवर्धन में इतना भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, हमें देख के आया वो संख्या, एक्चुअली कल मैं जब ट्रेन पकड़ने आया ना तो हमने बारिश है करके हमने जल्दी निकला, लेकिन इतना मालूम था कि ये पूर्णिमा के दिन गोवर्धन में बहुत परिक्रमा करते हैं लोग, इतना मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि स्टेशन पे ऐसा गर्दी रहेगा। हम निकले तो जल्दी, लेकिन क्या हुआ, इतना भीड़ था स्टेशन पे कि हम 3 किलोमीटर पहले अटक गए। गवर्नमेंट ने 20,000 बसों को वहां पे लगाया हुआ है, मथुरा स्टेशन चारों बाजू 20,000 बसों को लगाया हुआ है कि लोग आएंगे और सबको गोवर्धन छोड़ना है। तो मैं फिर कैसे कैसे करके, रिक्शा वाला उधर का था, कैसे भी उसको रिक्शा वालों को पहले बोले कि चलो भाई लेके, वो तो वही छोड़ रहा था, फिर बोले उसको डबल देंगे, तो और 2 किलोमीटर लेके गया, फिर बोले कि और पैसा देंगे, तो और थोड़ा लेके गया, तो वो भी लास्ट 1 किलोमीटर पहले वो भी हार गया कि अभी मैं फंस जाऊंगा, अभी इधर 2 दिन फंस गया तो लोचा हो जाएगा करके वो हिलने के लिए तैयार नहीं। तो हम पैदल उतर के गया कि क्या एग्जिट क्या है, पता चला कि सब लोग पूर्णिमा आकर के गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। और देखा सीन कि 1-1.5 मिनट के अंदर ना पुलिस वाले पूरे बस को पैक करवाते थे, सबको इतना भगा रहे हैं ना, सब पब्लिक भाग रही है, भाग रही है सीधा बस में बैठा रहे, बस भाग रही है सीधा बस में, भाग रही है इतना भीड़ था स्टेशन पे। तो देखिए कितना प्रेम है, ये केवल सनातन, दो ऐसे संत हुए जिसके लिए इस प्रकार के लोग भागते हैं, एक पंडरपुर तुकाराम महाराज, ठीक है, 1.5 एकादशी के दिन देखेंगे आपने कितना आपको 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा दर्शन करना है, तो वहां पे तुकाराम महाराज के लिए लोग आते हैं, और वृंदावन में सनातन गोस्वामी पाद के लिए लोग इतनी भीड़ होती है पूर्णिमा के दिन, और सनातन गोस्वामी पाद, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद का डेली का रूटीन क्या था, गोवर्धन, तो आज भी जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं सब, और यही मन के अंदर आता है कि हमारे जो बाबा है जो सनातन गोस्वामी पाद साथ में परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि डेली का रूटीन यही था कि सनातन गोस्वामी का वृंदावन से पैदल जाते थे गोवर्धन, गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद मथुरा में मधुकरी करते थे, मधुकरी करके वापस अपने भजन कुटी में आते थे। तो अभी ये बालक जो मदन नाम का बालक है, जिद करने लगा कि बाबा मैं आपके साथ चलना है, तो सनातन गोस्वामी पाद ने बोला देखिए मैं तो क्या हूँ, भिखारी हूँ, हमको खाने के लिए भी कुछ मिलता नहीं है, और जो भी रुका सुखा मिला हम उसमें खा के काम चला लेता हूँ, अभी तुम मेरे साथ आएगा तो मैं तुम्हारा कहाँ से पालन पोषण करूँगा। तो फिर भी वो जिद पकड़ लिया, नहीं हमको आपके साथ चलना है, आप जो भी खाएंगे वो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद बोले ठीक है ऐसा है तो चलो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको हमको जो मिलेगा मैं ऑफर करूँगा, और आप वो खा के रह सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो तो साथ में चलो ऐसा करके बोले। तो उसने बालक ने एक शर्त रखा, मतलब मदन मोहन स्वयं भगवान कृष्ण ही थे वो, तो शर्त रखा कि एक आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा, है ना, लेकिन आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, अपने भजन कुटी में ही आप पीछे मुड़ के मुझे देखिएगा, तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो सनातन गोस्वामी पाद गए, कहा मथुरा से वृंदावन, है ना, मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है ना। तो लोग गए और भजन कुटी में गए, और वहाँ पे जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सुंदर विग्रह के रूप में मदन जो है प्रकट हो गए, मदन मोहन के रूप में। तो आज भी मदन मोहन जी इस समय जो मूल विग्रह है वो जयपुर में है, लेकिन प्रतिबिंब विग्रह वहाँ पे आज भी वृंदावन में विराजमान है। तो इस प्रकार से ये सनातन गोस्वामी पाद मदन मोहन का सेवा करने लगे। सेवा मीन्स वही जो आता था उनको, हाँ, जो वो भिक्षा मांग के लाते थे, जो मिलता था वो ऑफर करते थे उनको। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे अपना भजन किया करते थे। तो एक दिन की घटना है कि कुछ दिनों के पश्चात मदन मोहन जी को उन्होंने वो अक्सर उनको क्या मिलता था, बाटी मिलता था। एक्चुअली ज़्यादातर भिक्षा में बाटी मिलता था, और कभी कभी नहीं मिलता था ना, आटा मिलता था ना, उसका बाटी बनाते थे, बाटी बना के वो खाते थे ऐसा, और उनका कोई दूसरा आहार था ही नहीं। तो वो और वो बाटी मदन मोहन को अर्पित करते थे और उसी बाटी को खा के वो रहते थे। तो एक दिन मदन मोहन ने उनको स्थान निभा, प्रकट होके बोले कि अरे बाबा, कम से कम बाटी के साथ नमक दिया करो, मतलब वो गले से नीचे नहीं उतरता है। तो तुरंत ही सनातन गोस्वामी पाद गुस्सा हो गए, मुझे यही मालूम था कि कुछ ना कुछ तुम्हारा वांटिंग हुआ है, इसलिए मैं मना करा था कि तुम आओ मत, आज तुम बोलोगे नमक दो और कल घी लाऊंगा, परसों ये लाऊंगा, परसों वो लाऊंगा, और वो करूंगा तो मेरा भजन कब होगा, और मैं इस प्रकार का नहीं कर सकता हूँ। एक काम करिए, आप किसी बड़े लोग के घर पे चले जाइए और मुझे शांति से भजन करने दीजिए। तुरंत ही भगवान मदन बोले कि प्रभु नहीं, आप ही हमारा सेवा करिए, अब ठीक है, आप जो ऑफर करेंगे मैं वही खाने, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो इस प्रकार से सेवा पूजा, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद के मन के अंदर तो ऐसा था कि भगवान कृष्ण है तो उनका सेवा पूजा किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि एक भक्त ये सोचता है कि प्रभु हमारे से ज्यादा फैसिलिटी हम प्रभु के लिए दे, है ना। तो इस प्रकार का उनके अंदर विचार हमेशा ये सताता था कि उनके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि कुटिया था, कुटिया में उनको भी रखे, उसी कुटिया में रहते थे, सोते थे, छोटा से। आज भी कुटिया देखेंगे ना उनका, तो उसमें केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है, इतना ही बड़ा है। देखे ना मदन मोहन आदित्य टीला के ऊपर, मदन मोहन मंदिर के पीछे है उनका भजन कुटी, तो इतना ही बड़ा था और उसमें वो रखते हैं। लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर था कि प्रभु है तो इनके लिए एक बड़ा विशाल मंदिर होना चाहिए, लेकिन कौन बनाएगा मंदिर। लेकिन एक भक्त, जब एक शुद्ध भक्त अगर इच्छा करता है ना कि इस प्रकार का कुछ होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसकी इच्छा पूर्ति होता है। तो उस समय क्या हुआ कि सामने ही यमुना जी है, तो मुल्तान देश का राजा कृष्णदास कपूर उसका नाम था, वो बहुत बड़ा व्यवसायी था, वो। तो वो क्या हुआ, वो अपना व्यवसाय के लिए नाव से, उस समय कुछ तो नमक का व्यवसाय था उसका, तो वो नाव से निकल रहा था और अचानक क्या हुआ, उसकी नाव जो है ना वो फंस गया, तो कुछ तो तूफान आया, जो भी कुछ हुआ उसमें फंस गया उसकी नाव, और नाव फंस गया और वो बहुत तेज आधी तूफान ये सब आने लगा, और वो बहुत डर गया कि अभी क्या होगा, सब मतलब हमारा सब माल जो है लगता है पानी में चला जाएगा, और क्या होगा बताने, बहुत डरा हो, डर गया हो। तो उस समय उसने देखा, अभी था तो जंगल ही पूरा, उस समय उसने देखा कि जो टीला है एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, और उसके ऊपर एक छोटा से बत्ती लाइट जलता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि जो सनातन गोस्वामी का बात का भजन कुटी है ना, वो टीले के ऊपर है, उसको आदित्य टीला बोलते हैं, है ना, आदित्य टीला, उसी उसी टीले के ऊपर भगवान ने कालिया नाग का दहन करने के बाद ना, उस टीले के ऊपर भगवान कृष्ण बैठ के ना, क्या उनको ठंडी बहुत लग गया था ना, तो वहाँ पे द्वादश सूर्य ने द्वादश किरणों से उनको क्या गर्मी प्रदान किया था, है ना, तो इसलिए उसका नाम द्वादश आदित्य टीला पड़ा। तो बहुत ऊपर था इसलिए उन्होंने उनको दिखाई दिया कि एक लाइट जल रहा है, तो उसको लगा कि वहाँ पे चलते हैं, कुछ तो मदद मांगते हैं ऐसा। तो वहाँ पे वो गया और जाके देखा तो एक बाबा जी, उनको प्रणाम किया, बोला कि बाबा जी इस प्रकार का अपना अपना जो भी पूरा घटना हुआ बताया कि हमारे नाव फंस गई है, आप कुछ करिए। तो सनातन गोस्वामी पाद बोले कि अरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भिखारी और इस प्रकार का ऐसा मेरा जीवन है, एक काम करो, इनके पास तुम माथा टेको, तुम्हारा कुछ करना चाहेंगे तो करेंगे ऐसा। तो दिखा दिए मदन को, उधर जाके प्रणाम करो तुम, और कुछ तुम्हारा होगा, कुछ बेड़ा पार करेंगे वो। तो तुरंत ही वो राजा ने, वो व्यापारी ने तुरंत ही क्या किया, भगवान के चरणों में गिरा और प्रार्थना किया प्रार्थना किया कि आप हमारे नौका को कर दीजिए, और साथ साथ में ये भी प्रार्थना किया कि आप अगर हमारा नौका पार करा दिए तो निश्चित हमारा जो व्यवसाय में जितना भी मुनाफा होगा हम क्या करेंगे, आपको आपके लिए अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार का ऐसा जब सोचा और वो वापस अपने नाव के पास चला गया और उसकी नाव निकल गई और वो जाके व्यवसाय किया, और उस समय जो व्यवसाय में मुनाफा हुआ ना कम से कम 8-10 गुना ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, और बहुत खुश हो गया। और बहुत खुश हो गया तो उसका इच्छा हुआ कि जिसकी वजह से ये हुआ है उसके लिए एक मंदिर बनाया जाए। तो तुरंत ही सनातन गोस्वामी पाद के पास जाके उन्होंने बोला कि क्या सेवा करूँ आप बताइए, क्योंकि आपकी कृपा से, आपके कृपा से ही हमारा नौका नैया पार हुआ, तो इसलिए आप बताइए कि मैं क्या सेवा करूँ। तो सनातन गोस्वामी पाद ने बोला कि आप प्रभु के लिए एक मंदिर बनाइए। तब जाके उसने एक बहुत विशाल मंदिर बनाया, इतना विशाल मंदिर बनाया ना कि वो वृंदावन में मंदिर था, लेकिन उस समय का जो मुसलमानों का ही राज्य था, औरंगजेब था, वो दिल्ली में रहता तो वहाँ से दिखता था वो मंदिर, इतना ऊंचा मंदिर था। आज जो मदन मोहन टेम्पल है उसका बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन बहुत बहुत हाइट था उसका। बाद में औरंगजेब मुसलमानों के आतंक से उसको तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से वो व्यापारी ने मदन मोहन जी का के लिए एक मंदिर बनाया। तो सनातन गोस्वामी पाद जिनका कि आज तिरुभाव तिथि है, उनसे हमको बहुत हृदय से आज प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जीवन यापन किया, उन्होंने ही नहीं पूरे षड गोस्वामियों ने, हम षड गोस्वामी अष्टकम गाए, हम उसका भी कभी चर्चा करेंगे किस प्रकार से षड गोस्वामी ने अपना जीवन यापन किया। एक्चुअली उनके जीवन यापन को अगर हम देखते हुए चलेंगे उसमें से अंश मात्र भी अपने जीवन में अगर पालन करें ना तो हमारी भक्ति में प्रगति बहुत तीव्रता से होगा। तो सनातन गोस्वामी पाद एक बार की घटना है कि जब वो बूढ़े हो गए, एकदम बूढ़े हो गए थे, लेकिन अपना रूटीन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, कभी भी छोड़ा नहीं, हमेशा उनका रूटीन वही रहता था। बूढ़े हो गए भी चल नहीं सकते, फिर भी वो गोवर्धन पैदल जाते थे, पूरा गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, परिक्रमा करके वही रूटीन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो एक बार बहुत बूढ़े हो चुके थे और गोवर्धन परिक्रमा करते 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 किधर तो वो लुढ़क गए, इतना धूप था और सहन नहीं हो रहा था और पूरा किधर तो लुढ़के, उस समय भगवान कृष्ण ने एक बालक का रूप लेके उनको, अभी वो बेहोश जैसा हो गए थे, उन्होंने अपने चादर को उनको छांव प्रदान किया, और छांव तक कुछ देर के बाद उनको होश आया। तो उन्होंने देखा और कि अरे प्रभु, साक्षात प्रभु आए, तुरंत हड़बड़ा गए, प्रभु आप हमारी सेवा में क्यों आ गए, ऐसा ऐसा करके इस प्रकार से बोलने लगे, बहुत प्रार्थना करने लगे। तो उस समय वो प्रभु ने बोला कि आप अभी आज से परिक्रमा के लिए इधर नहीं आएंगे, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अभी परिक्रमा के लिए यहाँ पे नहीं आएंगे। नहीं प्रभु, मैं तो मेरा जो रूटीन है मैं अपने रूटीन का पालन छोड़ूंगा नहीं, मैं तो करूंगा। देखिए अगर हमको कभी बोला जाए कि अभी चलो हम कड़क साधना, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हमने आज बनाया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कभी कभी चलो आज ये नियम को छूट है, तो कितना खुशी मिलता है। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद उस रूटीन को अपना छोड़ना, जो भी रूटीन था उनको छोड़ना, इतना तकलीफ था उनको, लेकिन कभी छोड़ना चाहे नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारी प्रगति, हमारा जो भी साधन भक्ति दिया गया हमको, जो भी साधना करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन दिया गया, उस रूल्स रेगुलेशन को पालन करने में ही हमारी प्रगति है। तो सनातन गोस्वामी पाद मना कर दिए, तो उसके बाद भगवान ने क्या बोला कि आप आज से आइए मत। उन्होंने तुरंत ही गोवर्धन का एक शिला दिया सनातन गोस्वामी पाद को कि आप इस शिला को लेके जाइए आप, और वृंदावन में रखिए, और उस शिला का आप डेली 4 बार प्रदक्षिणा करिए, और गोवर्धन के प्रदक्षिणा के फल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से भगवान के बोलने के बाद सनातन गोस्वामी पाद ने उस गोवर्धन शिला को लेके आए, जो कि आज गोवर्धन शिला कहाँ पे है, राधा दामोदर मंदिर के अंदर का है। इसलिए राधा दामोदर मंदिर में अगर आप जाते हैं तो अगर 4 बार परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन परिक्रमा के बराबर फल मिलता है। एक्चुअली राधा दामोदर मंदिर जो है ना, ये एक्चुअली पूरे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण जगह है राधा दामोदर मंदिर, क्योंकि हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं ना, जितने भी आचार वहाँ पे रख के बहुत सारे ग्रंथों को लिखे हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन होता था, हाँ साधु का सम्मेलन होता था, कथा कीर्तन वहाँ पे किया करते थे, और बहुत सारे आचरण वहाँ पे भागवत का पाठ किया हुआ है, बहुत मुख्य था। इसलिए प्रभुपाद जी ने वही जगह चुना, जब भी प्रभुपाद जी अपना घर बार छोड़ के जब निकले वृंदावन के लिए तो कौन सा स्थान चुना, राधा दामोदर मंदिर। वो उस स्थान में प्रभुपाद जी रख के पहला स्कंद और शायद दूसरा स्कंद भी वहाँ पे प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया हुआ है, और वहाँ से ही रूप गोस्वामी पाद उनको दर्शन दिए थे प्रभुपाद जी को, है ना। आज भी प्रभुपाद जी का स्थान है, सब है वहाँ पे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद का रूटीन था और आज उनका तिरुभाव तिथि है। एक बार की घटना है कि सनातन गोस्वामी पाद का भजन कुटी ना वहाँ पे भी है, कहाँ पे, गोवर्धन में, चकलेश्वर महादेव है। एक्चुअली पूरे ब्रज की रक्षा के लिए चार महादेव है ना, मथुरा में भूतेश्वर महादेव है, वृंदावन में कामेश्वर महादेव है, और उसके बाद कामवन, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, कामवन में कामेश्वर महादेव है, और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव है। तो चकलेश्वर महादेव के इधर सनातन गोस्वामी पाद में थोड़ी देर रुका करते थे और भजन करके थोड़ा विश्राम करके वहां से निकलते थे। तो कभी कभी वहां पे बहुत देर तक रुक के अपना जपा वगैरह करते थे वो। तो उनको वहां पे मच्छर बहुत थे तो बहुत डिस्टर्ब होते थे। एक्चुअली हम भी अभी सुबह बैठ के जब करते थे बहुत मच्छर लगते हैं, मच्छर काटते तो माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता कि पूछे मत। तो बहुत डिस्टर्ब हुए। तो कि अभी उन्होंने मन ही मन ऐसा प्लान किया कि अभी इधर बैठूंगा नहीं, इधर बहुत और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, सीधा निकल जाऊंगा वृंदावन। तो उस समय क्या हुआ, क्योंकि वो शिव जी का स्थान था और एक जो उच्च कोटि का वैष्णव है कभी भी एक जो भक्त होता है कभी भी भक्ति के संगति को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारी भक्ति में प्रगति एक भक्तों के संगति में ही रहकर हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो शिव जी तुरंत उस रात्रि उनके सपने में आए सनातन गोस्वामी पाद के कि प्रभु आप यहाँ पे भजन करने आइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि अभी आपको मच्छर नहीं काटेंगे, है ना। तो फिर बाद में शिव जी को ये मच्छर वाला रोकने वाला सेवा शिव जी ने लिया और फिर सनातन गोस्वामी पाद वहाँ पे भजन करने लगे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद जो कि आज उनका तिरुभाव तिथि है, आज के दिन पूरे वृंदावन पूरे ब्रजवासी लोग जो कि उनका नमन करते हैं और बाबा की पूर्णिमा है करके सब लोग भागते हैं गोवर्धन की तरफ और जाके गोवर्धन में कोई दंडवती परिक्रमा करता है, कोई परिक्रमा लगाता है। आज का दिन पूरा रात वो इतना बड़ा परिक्रमा मार्ग है कि किए हैं गोवर्धन परिक्रमा सब लोग किए हैं, इतना बड़ा परिक्रमा मार्ग है उसमें जगह नहीं मिलता है, मतलब आप भाग दौड़ के तो कर ही नहीं सकते परिक्रमा। कम से कम आज जो परिक्रमा करेगा ना कम से कम उसको 10-12 घंटा 13 घंटा लगता है, नहीं तो जनरली 5 घंटा में हो जाता है। इतना भीड़ रहता है, इतने लोग आते हैं आज के दिन। और सनातन गोस्वामी पाद का आज तिरुभाव था आज के दिन। कभी भी आचार्यों के तिरुभाव और आविर्भाव के दिन अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और हम आज के दिन उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से उनका भगवान के चरण कमलों में जिस प्रकार से तीव्रता था और जिस प्रकार से वो इस साधन भक्ति को बहुत तीव्रता से पालन किए, उसका अंश मात्र है, एक छोटा सा कण भी हमारे अंदर आया, जिस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया उसका एक छोटा सा भी बूंद मात्र हमारे ऊपर कृपा करें ताकि हम भी इस प्रकार से अपना जीवन यापन करें। तो इस प्रकार से आज सनातन गोस्वामी पाद का तिरुभाव तिथि और साथ साथ में व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा इसलिए क्योंकि व्यास देव का भी जन्मदिन है। तो ये दो चीज़ के ऊपर हमने आज चर्चा किया और विशेष करके कुछ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भी हमने चर्चा किया। तो नेक्स्ट बार से हम जो क्लास कितने बजे 7:30 बजे करेंगे इवरी थर्सडे को, क्लास का जो शेड्यूल ऐसा रहेगा कि 7:30 को आएंगे यहाँ पे, 2 माला जप करेंगे, 2 माला जप करने के बाद हम षड गोस्वामी अष्टकम से शुरुआत करेंगे। षड गोस्वामी अष्टकम से शुरुआत करने के बाद हम पूरा मंगलाचरण को करेंगे और मंगलाचरण होने के बाद फिर हम कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद हर बार मैं कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क करके आना है सबको और नेक्स्ट बार वो होमवर्क से शुरुआत करेंगे, फिर बाद में फिर आगे करेंगे। हाँ, ये शेड्यूल रहेगा पूरा, ठीक है। चलो हरे कृष्णा।
प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, वो मदन मोहन जी की जो आपने बताई वो वही बिक रहे हैं ना जो वो कुबड़ी को दिया था कृष्ण ने, कुबड़ी के घर पे गए थे उनसे मिले थे वो कृष्ण लीला में, कुब्जा उसके घर पे जाते जो विग्रह दिए थे
कहाँ पे वर्णन है मैं तो अभी सुना नहीं था।
प्रभु जी ने बताया
हो सकता होगा किसी ग्रंथ में वर्णन होगा, हो सकता होगा वही हो सकता होगा क्योंकि ऐसे विग्रह आज भी है एक्चुअली। जैसे कि जो गुरुवायर अपन में जो गुरुवायर जी का विग्रह है ना वो 5000 वर्ष पहले जो भगवान कृष्ण जो द्वारका में जिसका सेवा पूजा करते थे ना अभी गृहस्थ जीवन यापन कर रहे थे ना द्वारका में, तो आदर्श एक आदर्श गृहस्थ थे ना, तो भगवान कृष्ण भी अपनी ही मूर्ति की पूजा करते थे। तो जिसकी जिसका जिस विग्रह का पूजा करते थे ना, वो विग्रह ब्रह्मा जी ने गुरुवार में स्थापित किया है, तो वो विग्रह वही विग्रह है गुरुवार जी। तो ऐसे है होगा लिंक कहीं ना कहीं होगा,
ऐसा
वही होगा।
तो वो बोले कि ठीक है फिर मैं नहीं जाता हूँ, मेरा विग्रह